पृष्ठ संख्या 229। ऋतु प्रार्थनाएं। झर 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 निर्झर गिरिसर में घर, मरु तरु मरमर सागर में सरित तड़ित गति चकित पवन में मन में विजय गहन कानन में आनन आनन में रव घोर कठोर राग अमर अंबर में भर निज रोर। निराला ने अपने संपूर्ण कवि जीवन को ऋतुओं के बिंब में बांधने का अथक प्रयत्न किया है। ऋतुओं के लौटने के साथ ही बार बार कवि का जीवन बिंब भी लौटता है। फिर इसके प्रतिकूल की स्थिति दिखाई देती है। कवि की रचनात्मक समृद्धि के बार बार आलोकित और तिरोहित होने के साथ ऋतुएं भी आलोकित या तिरोहित होती हैं। अपने समकालीनों में निराला में ऋतुओं का आकर्षण सर्वाधिक है। ऋतु बिंबों से होकर कवि बार बार रचना में वापस आता है। अपने छीजते हुए जीवन और रुकी हुई काव्य समृद्धि को पाने और प्रवाह देने के लिए ऋतुओं का प्रसंग जिस तरह निराला ने उठाया है वह अद्भुत है। अपने जीवन बिंब को ऋतु बिंबों में समाहित देखने के फलस्वरूप ही निराला के लिए ऋतु वर्णन कविता का तटस्थ विषय मात्र नहीं है, जैसे कालिदास के लिए या पंत के लिए है। इसीलिए उनके ऋतु वर्णन में इतिवृत्त कथन न्यूनतम है। ऋतुओं के वर्णन में कालिदास की तरह किसी घटना या इतिवृत्त तक नहीं पहुँचते, बल्कि आत्मकथन और अनुभव के ध्वन्यात्मक प्रसंगों की गहराई से अपने को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। कालिदास का ऋतुवर्णन हर जगह अपने समाहार में एक घटना के घटित होने तक ले जाता है, चाहे वह स्त्रियों के संभोग तक हो या बंदरों के गुफाओं में छिपने तक या चंदन का शीतल लेप करने या वस्त्रों और श्रृंगार के परिवर्तन तक। निराला का ऋतुवर्णन इसके सर्वथा विपरीत दिशा में जाता है। वह अनुभव और संवेग को उसके अंतिम छीनेपन तक तान कर छोड़ देता है। कुछ इस समय की संवेगात्मकता तार तार दिखाई देने लगती है। यही विशेषता उन्हें सारे भारतीय कवियों से अलग करती है। पृष्ठ संख्या 323। अलंकरण या तटस्थ विवरण या चमत्कार प्रदर्शन अथवा नए नए कलात्मक ललित उपमानों और चित्रों की खोज उनके ऋतु वर्णन का उद्देश्य कतई नहीं है। इससे भी आगे मात्र फूलों, रंगों, ऋतुओं के बदलते प्रभावों का सूक्ष्म अन्वीक्षण और यथातथ्य आकलन भी कालिदास की तरह निराला के ऋतु वर्णन का उद्देश्य नहीं है। इससे अलग ऋतुओं के प्रसंग को अपने जीवन के व्यापक अनुभवों के भीतर से गुजरते हुए उन्होंने व्यापक जनजीवन के संवेगात्मक प्रसंगों स्थितियों से जोड़ने का प्रयत्न किया है। इस तरह सिर्फ वर्णन और इतिवृत्त की व्यापकता से ऋतु प्रसंग को निराला अनुभूति के संवेगात्मक क्षणों के प्रसार तक खींच ले जाते हैं, चाहे सुख समृद्धि उल्लास या उत्तेजना के विस्फोटक क्षण हों या अवसाद खिन्नता उदासी अवसान या तिरोहित होने के छीजते हुए शांत क्षण। निराला उन्हें पारंपरिकता और गतानुगतिकता से अलग सर्वथा निजी रूप में ऋतुओं के माध्यम से जीते हैं। इसीलिए उनके ऋतु वर्णन को आलंबन या उद्दीपन जैसे काव्य शास्त्रीय ढांचे में बांधना नामुमकिन है। वह या तो जीने को फिर से पाना है या अवसान का बार बार अनुभव करना है। इस पाने और अनुभव करने के बीच से जब हम उनकी ऋतु कविताओं का अध्ययन करने बैठते हैं तो वह हमें साधारण कविताओं से अधिक ऋतु प्रार्थनाएं लगती हैं। सुख उल्लास या अवसान सभी संवेगात्मक स्थितियों में पवित्र और निश्चल मन से की गई प्रार्थनाएं। शायद इन्हीं संवेगात्मक क्षणों का अलग विकास शरणागति की कविताओं में होता है। उपर्युक्त संदर्भों को ध्यान में रखकर ही निराला की ऋतु कविताओं का अध्ययन सही दिशा में किया जा सकता है। ऋतु कविताओं की दृष्टि से निराला का सर्वाधिक आकर्षण वर्षा ऋतु के प्रति दिखाई देता है। सबसे अधिक कविताएं निराला ने वर्षा ऋतु पर ही लिखी हैं। अनामिका से लेकर सांध्य काकली तक उनके सभी संग्रहों में वर्षा ऋतु की कविताएं सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं। अनेक ऋतुओं और भावभूमियों, अनेक कलात्मक शब्द बंधों में विविध ढंगों से उन्होंने वर्षा ऋतु को अपने निजी संवेगात्मक क्षणों में पहचानने, जीने और पूंजने का प्रयास किया है। उनका वैविध्य दर्शनीय और चकित कर देने वाला है, और जैसा कि इस निबंध के शुरू में मैंने कहा, उनमें पारंपरिकता कमतम है। वर्षा ऋतु से संबंधित उनकी कविताओं की कुल संख्या लगभग 52-53 के आसपास ठहरती है, जिनमें शायद 4-6 कविताएं ही ऐसी होंगी जिनमें वर्षा के पारंपरिक वर्णन का रूप या स्थापत्य हमें मिलता है। शेष सारी कविताएं कवि के अंदर से प्रवाहित उल्लास के खलखलाते स्रोत हैं या शांत प्रवाहित अवसाद की अनुभूतियों की पवित्र धाराएं। पृष्ठ संख्या 231। वर्षा ऋतु संबंधी इन कविताओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। सबसे अधिक कविताएं इस दृष्टि से गीत गुंज में हैं, जिनकी संख्या 14 है। ये सारी कविताएं फिर उनके अंतिम संग्रह सांध्य काकली में भी संग्रहित हैं। सांध्य काकली की शेष कविताओं में से 7 फिर वर्षा ऋतु से संबंधित हैं। इस दृष्टि से देखें तो उनके इस अंतिम काव्य संग्रह में वर्षा कविताओं की संख्या 21 ठहरती है। इसके अलावा इस अंतिम संग्रह में 2 कविताएं शिशिर पर भी हैं। अन्य कविताओं की भी बिंब योजना और भाषिक संरचना में ऋतु संबंधी शब्दों, ध्वनियों, रंगों और गतियों का बाहुल्य है। इस दृष्टि से सांध्य काकली का नाम ऋतु काकली या वर्षा काकली ज़्यादा उपयुक्त लगता है। अर्थ प्रसार से सनातन मौन की तरफ बढ़ते हुए निराला ऋतुओं में अधिकाधिक डूबते गए हैं, और जहाँ वे अर्थरहित ध्वनियों से खेलना शुरू करते हैं, वहाँ भी उन्होंने वर्षा का ही आश्रय अधिक ग्रहण किया है। वारि वन वनवारी या धिक मनस्सब मान गर्जे बदरवा जैसी कविताओं को इस संबंध में देखा जा सकता है। इस तरह निराला के कवि का कभी न आने वाला अंत जिस ध्वनि से खेल द्वारा कविता की अमूर्ततम लय को पहचानने के प्रयत्न तक पहुंचता है, वहाँ भी वह अमूर्ततम लय वर्षा के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। वर्षा ऋतु के संबंध में हम आगे विचार करेंगे। वर्षा के बाद निराला की दूसरी प्रिय ऋतु वसंत है। वसंत की छवि के वर्णन भी बार बार उनकी कविताओं में और उनके कवि जीवन में लौट लौट आते हैं। अनामिका के गीत वसंत की परी से प्रारंभ करके गीतिका की रूखी री यह डाल की आकांक्षा, ब्रैकेट में रूखी री यह डाल वसन वासंती लेगी ब्रैकेट बंद से गुजरते हुए वह गीत गुंज की कूची तुम्हारी फिरी आंगन में के रंग सौंदर्य और आशीष उपलब्ध करने की पवित्र और शांत भूमि तक वसंत ऋतु के माध्यम से पहुँचते हैं। वसंत ऋतु संबंधी उनकी कविताओं की कुल संख्या लगभग 18 के आसपास ठहरती है। सबसे अधिक वसंत की कविताएं अर्चना में हैं, जिनकी संख्या 7 है। उल्लास, सुख और पूजा का पवित्र भाव यहाँ दर्शनीय है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनके अंतिम संग्रह में वसंत की कोई कविता नहीं है। वसंत ऋतु की इन कविताओं पर भी हम इस अध्ययन में आगे चलकर विस्तार से विचार करेंगे। ग्रीष्म ऋतु। निराला ने ग्रीष्म पर कोई कविता नहीं लिखी है। रविंद्रनाथ की कविता बैशाख का अनुवाद उन्होंने अवश्य किया है, जो अनामिका में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त एक दो कविताओं में ग्रीष्म का बिंब अवश्य आया है। तोड़ती पत्थर में ग्रीष्म के पृष्ठ संख्या 232 एक खंड चित्र को प्रस्तुत करके उसकी पृष्ठभूमि में पत्थर तोड़ती हुई स्त्री के श्रम, काठिन्य और तकलीफ को आंका गया है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। यह चित्र न जाने क्यों मुझे बार बार प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के अंतिम दृश्य की याद दिलाता है, जहाँ पत्थर तोड़ते हुए हेरी को लू लग जाती है और वह मर जाता है। धीरे धीरे धूप के चढ़ने और तमतमाते जाने, फिर झुलसाती हुई लू के बवंडरों में रुई की तरह जलती हुई पृथ्वी, अंधड़ और धूल की चिनगियों से आच्छादित दोपहर, शायद इतने कम शब्दों में ग्रीष्म की भयावहता का चित्रण बहुत कम कवियों ने किया है, लेकिन यह सिर्फ ग्रीष्म के आवेग को उठाने वाला शब्द चित्र ही नहीं है। कवि तो उसकी पृष्ठभूमि में पत्थर तोड़ती हुई स्त्री की अनवरत विश्रामहीन श्रमशीलता को उजागर करना चाहता है। यह कालिदास के उस ग्रीष्म का चित्र नहीं है जहाँ कामिनियाँ अपने नितंबों और आस्तनों पर चंदन का शीतल लेप करती हैं और रेशमी वस्त्र धारण करके विलास की तैयारियां करती हैं। यह भवभूति का कुंजति क्लांत कपोत कुक्कुट कुलाह कूले कुलाय द्रुमा वाला वन के अस्तब्ध ग्रीष्म का चित्र भी नहीं है। यह रविंद्रनाथ का ज्वलिते छे सम्मुखे तो मार लोलुप चिताग्नि शिखा ले ही विराट अंबर निखिलेर परित्यक्त मृतस्तूप वत्सर करी भस्मसार चिता ज्वले सम्मुखे तोमार वाले ग्रीष्म के रुद्र भैरव दीप्त चक्षु शीर्ण सन्यासी वैरागी ग्रीष्म का दार्शनिक वर्णन भी नहीं है। शायद बंगालवासी रविंद्रनाथ को ग्रीष्म की प्रचंडता का अनुभव उतना नहीं रहा होगा जितना उत्तर प्रदेशवासी निराला को। इसीलिए शब्दों की प्रचंडता और पृष्ठ संख्या 233 तांडव सादृश्य अतिशयोक्तिपूर्ण सर्जना रविंद्रनाथ करते हैं और फिर उसे शीर्ण सन्यासी दीप्त चक्षु आदि उपमाओं से विभूषित भी करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, यहाँ ग्रीष्म चित्रण में रविंद्रनाथ का कुल उद्देश्य उसके वर्णनात्मक घटाटोप में से एक कविता खींच निकालना है, एक विशिष्ट सोचे हुए जीवन दर्शन की कविता। ग्रीष्म को अपनी ब्रैकेट में कवि की अनुभूतियों के तद्धत जोड़े देने या उसकी विनाश लीला या उसके द्वारा संघर्ष को अधिक तीखा बनाने, उसे धार देने और उसके द्वारा फेंकी गई चुनौती को सहज मूक भाव से स्वीकारने और झेलने का भाव नहीं है, जैसा कि निराला की उपर्युक्त पंक्तियों में है। इस तरह जहाँ बैशाख रविंद्रनाथ के लिए कविता खींच निकालने का एक माध्यम है, वहाँ निराला के लिए वह तोड़ती पत्थर में एक सहज चुनौती है। रविंद्रनाथ की इस कविता का सौंदर्य शब्द तांडव का सौंदर्य है। इस शब्द तांडव के माध्यम से ही वह पूरी कविता को दार्शनिकता की घटाटोप में खींच ले जाते हैं। इससे भी आगे बढ़कर यह शब्द तांडव ही प्रधान हो जाता है और पाठक उसके प्रखर नृत्य में चकाचौंध हो जाता है। लेकिन निराला की शब्द योजना में उस प्रकार की प्रखरता नहीं है। उससे ग्रीष्म की एक झीनी मार ब्रैकेट में गर्द चिनगी छा गई ब्रैकेट बंद प्रकट होती है। आंतरिक मूक और अनवरत मार धुलाय धूसर रूक्ष उड्डीन पिंगल जटाजाल तपह क्लिष्ट तप्त तनु मुखे तुले विषाण भयाल करो दिए डाक हे भैरो हे रुद्र बैशाख जैसी तपपूत काया में क्रोध का समावेश निराला नहीं करते। रविंद्रनाथ एक सजग निहायत सजग और सचेत कवि हैं। वह रुद्र बैशाख की भूमिका से कविता को पूर्व चिंतित किस निष्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम है। वह एक महान कवि हो सकते हैं, लेकिन मानवीय संवेदना की सहज असीखी विवश अनुभूति के प्रवक्ता नहीं। जबकि निराला ग्रीष्म के इस सारे क्रोध को सिर्फ एक शब्द तमतमाता से व्यक्त करते हैं। तमतमाता में जो धीरे धीरे क्रोध के आवेग से चिनकती हुई बढ़ती जाती चेहरे की लालिमा की अभिव्यक्ति हुई है, वह रविंद्रनाथ के शब्द चित्रों का एक लंबा बुना हुआ जाल भी नहीं व्यक्त कर पाता। रविंद्रनाथ विशेषण पर विशेषण जड़ते चले जाते हैं और अंततः वह विशेषण ही उनकी सारी कविता का साध्य और अभिप्रेत बन जाता है। जबकि अपनी कविता की एक पंक्ति के दोहराव वह तोड़ती पत्थर से ही निराला ग्रीष्म की चुनौती के सहज स्वीकार को व्यक्त कर देते हैं। मुझे लगता है रविंद्रनाथ के सामने जहाँ ग्रीष्म पर पृष्ठ संख्या 234 लिखते वक्त अनेक कवियों की रचनाएं रही होंगी, वहीं निराला के सामने एक तत्कालिक मानवीय समस्या का संदर्भ। यह एक प्रकार से गुणात्मक अंतर है। रविंद्रनाथ जहाँ कालिदास भवभूति के समानांतर अपनी कविता को स्थापित करने की सोचते रहे होंगे, निराला इस गता अनुगतिकता से मुक्त सर्वथा एक दूसरे नितांत मौलिक और अछूते धरातल पर अपनी कविता में ग्रीष्म के संदर्भ को उठाते हैं और यही निराला रविंद्रनाथ के आगे के कवि सिद्ध होते हैं। ग्रीष्म के इसी संदर्भ में निराला की दूसरी कविता उक्ति ली जा सकती है। वस्तुतः यह कविता भी ग्रीष्म ऋतु पर सीधे सीधे लिखी गई कविता नहीं है, लेकिन ग्रीष्म के बिंब में निराला ने अपने जीवन बिंब को देखने की कोशिश यहाँ अवश्य की है। यहाँ निराला ग्रीष्म के पूरे बिंब और अपने दुखांत जीवन बिंब को एकमेक कर देते हैं। इस अत्यंत संक्षिप्त कविता का सफल काव्य सौंदर्य और शब्द संयोजन दर्शनीय है। शब्दों की दोहरी व्यंजना और उससे निकलने वाले लाक्षणिक अर्थ का संभार अपने आप में पूर्ण है। ग्रीष्म की सारी उक्ति जीवन ग्रीष्म की व्यंजना में बदल जाती है। जला है जीवन यहाँ आतप में दीर्घ काल, सूखी भूमि सूखे तरु सूखे सिक्त, आलवाल बंद हुआ गुंज धूलि धूसर, हो गए कुंज किंतु बड़ी व्योम उर बंधु नील मेघमाल। निराला रविंद्रनाथ पर कालिदासो बिलासा का जो आरोप लगाते हैं और उसी परंपरा में सुमित्रानंदन पंत को जब रखते हैं और अपने को इन तीनों कवियों के विपरीत तथा हिंदी की प्रकृति के निकट बताते हैं, उसके उदाहरण स्वरूप भी यह कविता उद्धृत की जा सकती है। इसमें दंत सा का सौंदर्य और प्रयोग देखने लायक है। पूरी कविता में कहीं भी शा ळ का प्रयोग नहीं दिखाई देता। ऐसे शब्द जिनके लिए निराला शपाशप कहकर रविंद्रनाथ का मजाक उड़ाया करते थे, दूसरी ओर शब्द तांडो ग्रीष्म के चित्रण में यहाँ भी निराला द्वारा प्रयुक्त नहीं है। अवसान और समाप्त होने का भाव अत्यंत गहराई से जैसे चुपचाप प्रेषित कर दिया गया है। इसके ठीक विपरीत रविंद्रनाथ जब पृष्ठ संख्या 235 अवर्तिया तृणपर्णा घूर्ण छंदे सुनये आलोडिया चूर्ण रेणुराश मत्स्यमे स्वासिछे हुताश कहते हैं, तो यह आसानी से लक्षित किया जा सकता है कि वह ग्रीष्म की प्रचंडता को व्यक्त करने के लिए किस तरह शब्दों की प्रचंडता की खोज में लगे हुए हैं। इसकी जगह निराला की कविता एक सहज सीधी उक्ति है। प्रचंड धूप में बहुत दिनों तक यदि पृथ्वी जले तो उसकी दशा क्या होगी। आगे इसका सहज सपाट वर्णन है, लेकिन पृथ्वी की तरह जीवन को जलना कहकर निराला पृथ्वी के उन सारे उपमानों में जीवन के उपमानों को संकेतित कर देते हैं। भूमि विशाल जीवन पट तरु मन का अनंत हरा भरा उल्लास, आलवाल सहज संवेदना के स्रोत गुंज गायन आनंद की मुक्त मुखर अभिव्यक्ति, कुंज क्रीड़ा के स्थल प्रेरणा के स्रोत सबका समग्र अवसान। लेकिन कवि को कहीं आशा है इन सारी आत्महंता स्थितियों में भी, इसका भी एक प्रतिफल है। इस संपूर्ण आजीवन संघर्ष का भी अंततः एक विशाल आस्था में परिशमन होता है। विशाल नीले अनंत आकाश में विष पचाने वाले जीवन के हृदय पर श्यामल मेघों की मालाएं दिखीं। संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, रचना प्रतिफलित हुई। अंततः इस कविता का पर्यवसान भी निराला वर्षा ऋतु की पूर्व सूचना में करते हैं, लेकिन यह आस्था यह अनंत विश्वास आरोपित या सोचा हुआ नहीं लगता, बल्कि सारे संघर्ष की एक सहज स्वाभाविक परिणति लगता है। इन दो चित्रों के अतिरिक्त निराला के सारे संग्रहों में अन्य कोई भी पूरी कविता ग्रीष्म पर नहीं है। कहीं कहीं दो चार पंक्तियाँ किसी किसी कविता में अवश्य मिल जाती हैं, जैसे नए पत्ते के खेल शीर्षक कविता की दो पंक्तियाँ। पूरी कविता निराला ने मनोरंजन के मूड में लिखी है। जेठ की दोपहर में एक लड़का पाकड़ के पेड़ पर चढ़ता उतरता है और अंत में नाक से आवाज़ निकालता हुआ भूतों जमदूतों को भगाने लगता है। पूरी कविता में एक सरल सीधे गंवई लड़के के एकांत खेल और मनोरंजन की सहज हास्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। ग्रीष्म ऋतु की एकांत निर्जनता में छायादार पाकड़ का पेड़ और भूत भगाने का खेल एक सहज निश्चलता की उतनी ही सहज निश्चल अभिव्यंजना। ग्रीष्म ऋतु वहाँ भी प्रधान नहीं है। ग्रीष्म के प्रखर ताप से व्याकुल कालिदास की रमणियों की सहवास क्रीड़ा का प्रकांतर से पूरी कविता मजाक बनाती है। मैं नहीं जानता कि निराला ने किस मना स्थिति में यह कविता लिखी, लेकिन अगर उस लड़के के सरल खेल को कालिदास की युवती क्रीड़ा के समांतर रखकर देखा जाए तो एक अच्छा खासा विसंगतिपूर्ण व्यंग्य उभरता है। ऋतु कविताओं के संदर्भ में भी निराला ने अपनी कुछ कविताओं में ऋतु वर्णन को पृष्ठ संख्या 236 भी उसके पारंपरिक आभिजात्य से मुक्त करने का सफल प्रयास किया है। प्रस्तुत कविता इसी तरह का उदाहरण है। इसी तरह ग्रीष्म के संदर्भ का चित्र नए पत्ते की एक दूसरी कविता देवी सरस्वती में मिलता है। यही एक कविता है जिसमें देवी सरस्वती को कवि ने षट ऋतु वर्णन के रूपक में बांधा है। वैसे यह कविता कुल मिलाकर प्रार्थना परक है और कई अर्थों में राष्ट्रीय उद्बोधन संबंधी कविताओं के अंतर्गत ली जा सकती है। इसमें फिर कवि ने भारतीय प्रार्थना क्रम की अपनी ही कविताओं की रचनात्मक समृद्धि को ध्वस्त करके एक नए ढंग की सामाजिक प्रार्थना, जन जन के कल्याण और सुख की प्रार्थना की कल्पना की है। इसमें ग्रीष्म का जो चित्र निराला ने प्रस्तुत किया है वह प्रचंड या विनाशकारी नहीं है, बल्कि समृद्ध सुख और उल्लास के परिणामों से पूर्ण है। ग्रीष्म ताप मय लू की लपटों की दोपहरी, झुलसाती कीड़ों की वर्षों की आठहरी, तुम हो शीतल कूप सलिल जामुन छाया तल, लदे आम के बागों से जीवन का संबल, गेहूं चने मटर मड़कर घर आए अतिशय।